रामदेव अग्रवाल जी अक्सर एक बात कहते हैं कि नेवर कम इन फ्रंट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रेन, और आज हम एक ऐसे ही शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या इस वैल्यूएशन पे उसको खरीदना सेंसिबल है कि नहीं। इसका डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो में बाद में बनाऊंगा, बट आज हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे ये शेयर इतना बढ़ क्यों रहा है, इस शेयर के पास ऐसा क्या बिजनेस है और क्या आपको इस वैल्यूएशन पे इस शेयर में पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल में। मैं हूं जतिन अग्रवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं IRCTC को। गाइज, आज जब मैं 19 तारीख को 19 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूं तो ये शेयर 1830 रुपए के पार अपनी क्लोजिंग दी है इस शेयर ने। ये शेयर बहुत महंगा हो चुका है वैल्यूएशन पे, हम वो सब डिस्कस करेंगे, बट जानते हैं कि इस शेयर की रैली की शुरुआत हुई कब। तो गाइज, इस सब की शुरुआत हुई जब इसका इशू ओपन हुआ था सेप्टेम्बर 30 को। इसका लॉट साइज गवर्नमेंट ने रखा था 40 शेयर का और इसका ऑफर प्राइस था, आप यकीन नहीं करोगे, 315 से 320 रुपए का। बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट होने वाली थी, पर इसका जो ऑफर प्राइस आया था तो काफ़ी सस्ता था। लिस्टिंग का था सबको कि अच्छी होगी, कितनी अच्छी होगी इसका आइडिया नहीं था, काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन थी, मैंने भी सब्सक्राइब किया था, मुझे शेयर्स नहीं मिले थे। बट उसके बाद जब इसकी लिस्टिंग हुई है और जो रैली इसने दिखाई है और जो नंबर्स इसने दिखाए हैं, दे आर अनबिलीवेबल। ये शेयर मंडे अक्टूबर 14, 2019 को लिस्ट हुआ और 600 रुपए के भी ऊपर लिस्टिंग हुई थी, यानी कि 100% के रिटर्न तो इसने लिस्टिंग वाले डे ही दिखा दिए थे ओपनिंग के टाइम पे। और उसके बाद से ये शेयर 1800 के पार हो चुका है, 3 गुना हो चुका है अपने लिस्टिंग वाले प्राइस से भी। मैंने उस दिन इस शेयर को नहीं खरीदा था और देखा जाए तो एक काफ़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। मुझे लगा था उस समय भी ये कंपनी महंगी है सरकारी कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से, और आज तो मुझे बेहद महंगी लगती है। सबसे पहले हम वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं जिस पर मैं इतना फोकस कर रहा हूँ। इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 70 के अराउंड का है इस समय। 70 के अराउंड पे आपकी कंपनी वो ट्रेड हो रही होती है जो प्रॉपर मोनोपोली होती है, जो कि ये है। आपको नेस्ले जैसी कंपनीज मिल जाएंगी 70 के पीई रेशियो के अराउंड ट्रेड होते हुए, जिनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो क्या इस कंपनी की डोमिनेंस है मार्केट में? बिल्कुल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो बिजनेस है IRCTC का, ये रेलवे केटरिंग का बिजनेस हैंडल करती है और टिकट बुकिंग का बिजनेस हैंडल करती है मेनली। ये एक सब्सिडरी कंपनी है इंडियन रेलवेज की और ये मोनोपोली अपने फील्ड में, जहाँ पे ये काम करती है वहाँ पे कोई और काम नहीं करता। उस बेसिस पे देखा जाए तो इसको ये वैल्यूएशंस बिल्कुल मिलनी चाहिए और इसलिए मिल भी रही हैं। तो फिर गाइस, दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहाँ से शुरू होती है कि सरकारी कंपनी है। अब भले ही रेलवेज के कंपनीज बड़ी प्रोफेशनली रन है, बट आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब इनको टिकट प्राइसिंग के जो कैंसिलेशन वगैरह होती हैं, जो ऑनलाइन टिकट प्राइसिंग के चार्जेस होते हैं, उस पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी कि आप सर्टेन परसेंटेज या इस अमाउंट ऑफ मनी से ऊपर नहीं ले सकते। ऐसे समय में इन कंपनीज को बहुत दिक्कत आती है। हमने ये परेशानियां देखी हैं HPCL BPCL में आते हुए, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि इतना तेल महंगा हो गया कि आपको 1 रुपये का 1.5 रुपये का कट लेना पड़ेगा, उस समय भी हमने देखी थी ये दिक्कतें। सरकारी कंपनीज के पास मोनोपोली है, प्राइसिंग पावर है, सब कुछ है, बट दिक्कत यही रहती है कि गवर्नमेंट कभी भी उनका बिजनेस मॉडल चेंज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम है सोशल वर्क करना, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी कभी आती है तो गवर्नमेंट इसको कह सकती है, मान लीजिए स्लोडाउन बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक चलता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा चलेगा, बट मान लेते हैं ये 3-4 साल चलता है, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उस समय पे आप देखोगे गवर्नमेंट 100% इनको कहेंगे कि आप प्राइजेस अपने कम करिए, आप इससे ज़्यादा पे टिकट नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का ट्रैवल ही बंद हो चुका होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा रहता है इनके बिजनेसेस में, मुझे सरकारी कंपनीज पर्सनली खुद कम पसंद आती हैं। और आप देखोगे शायद ही कोई सरकारी कंपनी होगी जो 70 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही होगी। आप देखेंगे गवर्नमेंट की जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है ONGC, वो अराउंड 6 के PE multiple पे ट्रेड कर रही है। तो देखा जाए तो IRCTC डेफिनेटली मोनोपोली बिजनेस है। आपका कोल इंडिया भी मोनोपोली बिजनेस था, बट इन बिजनेसेस को इतनी वैल्यूएशन देना क्या ठीक है? इस चीज़ को आपको और मुझे क्वेश्चन करना ज़रूरी हो जाता है जब हम निवेश करते हैं। बट अगेन बात यही आती है जो रामदेव अग्रवाल जी हमेशा कहते हैं, नेवर कम इन फ्रंट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रेन। आपको नहीं पता है रैली कब जाके रुकेगी। ये ज़रूर है कि अगर आपको इसमें जंप करना है तो मोस्टली क्या गड़बड़ होती है, जब आप लेते हो उसके बाद शेयर गिरना शुरू हो जाता है। IRCTC में अब तक कोई पुलबैक नहीं दिखा है प्राइस में। मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि ये रैली चलती रहे, मैं तो चाहूंगा कि लोगों का पैसा बने, और इन्वेस्टर्स का पैसा तभी बनता है जब लॉन्ग टर्म में शेयर बढ़ता है। अर्निंग्स भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही है। डेफिनेटली वैल्यूएशंस हैव रन अहेड ऑफ अर्निंग्स, बट अगर अर्निंग्स इसी तरह कंटिन्यू रही तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने के लिए इधर उधर खड़ा हो जाएगा शेयर। अर्निंग्स इसकी चलती रहेंगी तो उस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो गाइज, इसके अंदर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बाद में बनाऊंगा। मैं असल में टेक्निकल्स वगैरह इंटीग्रेट करना चाह रहा था, बट क्योंकि शेयर में कोई पुलबैक नहीं दिख रहा है तो टेक्निकली बहुत ही बुलिश चार्ट है इसका इस समय, और इसमें कोई मैं टारगेट प्राइस आपको नहीं दे सकता। मैं इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मिक्स करके विद इन अ मंथ और सो आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर अर्निंग्स वगैरह भी हम देखेंगे, हम एग्जैक्टली देखेंगे कि कितना पैसा कहाँ से कंपनी कमा रही है। तो अभी मैं मेग मनी ऑर्गेनिक्स और अवंती फीड्स पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद IRCTC पे एक वीडियो जल्दी आएगी। अभी के लिए लेकिन आपको जो करना है वो ये है, अगर आप इसके अंदर बने हुए हैं तो बने रहिए शेयर के अंदर, आप इसको बेचिए मत, क्योंकि ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि आपको नहीं पता है 2000 पे जाके रुकेगा, ये 2500 पे जाके रुकेगा, 3000 पे जाके रुकेगा, आपको इसका आइडिया नहीं है। लेट से आपने बाद में जंप किया है और आप अभी कॉस्ट के आसपास ही है आपका ये शेयर, तो मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा के चलिए, मे बी 10% 15% डाउन टर्न में, क्योंकि है क्या ये स्टॉक इतना बढ़ गया है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 10-20% गिर जाए। आज की ही रैली आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी रैली थी, और अगर आपने ये सस्ते में खरीदा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 1200 रुपये पे लिया हुआ है, ना कि 600-700 रुपये पे, 1200 पे लिया हुआ है, 1800 हो गया है, आपके पास 600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉस्ट के पास ही इसका स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर आपको फंडामेंटली पसंद है कंपनी तो डेफिनेटली होल्ड करिए, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटली ये कंपनी पसंद है तो स्टॉप लॉस भी फंडामेंटल बेसिस पे होना ज़रूरी है। बट अगर आपने थोड़ा सोचा था कि शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ ये कंपनी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी मैं इसको निकाल दूंगा, तो फिर मैं कहूँगा कि आप कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखें। मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मुझे लग रहा है ये बढ़ रहा है तो इसे बढ़ने दो, ये यूं जा रहा है इसे यूं ही जाने दो। नॉर्मली एविएशन के स्टॉक्स का होता है ये इशारा कि प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर ट्रेन इनको दिखानी पड़ेगी, और हमें भी कभी कभी लगता है कि अब आपको इमोजीज जो प्लेन के उनको रिप्लेस करके ट्रेन का इमोजी लगा देना चाहिए वहाँ पे। IRCTC के शेयर ने जो रैली दिखाई है, इतनी रैली तो आपके राइट्स के शेयर ने, इरकॉन के शेयर ने और इवन RVNL ने नहीं दिखाई। तो वैल्यूएशंस क्या स्ट्रेच्ड हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये सस्टेन हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अगर अर्निंग्स आएंगी तो फिर वैल्यूएशन खुद नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट क्या आपको इसको सिर्फ बेच देना चाहिए इस बेसिस पे कि ये थोड़ा ओवर प्राइज्ड है? नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम तक ओवर वैल्यूएशन दे सकती है कंपनीज को, एंड उस समय आप बेच दोगे तो आपको यही लगेगा कि बाद में मैं एंटर कैसे करूं, अगर यहाँ से 10% बढ़ जाएगा शेयर तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो मेरी सजेशन यही है, अगर आप बने हुए शेयर के अंदर बिल्कुल बने रहिए, पैसा जब बढ़ रहा होता है उसको बढ़ने दीजिए। बेसिकली यू शुड ऑलवेज लेट योर ट्रीज ग्रो एंड ऑलवेज कट दोज वीड्स विच आर ईटिंग इन टू योर प्रॉफिट्स। जो शेयर नहीं बढ़ रहे, जो बिल्कुल लॉस करे जा रहे हैं, वो शेयर्स होते हैं बेचने के, ना कि वो शेयर्स जो बढ़ रहे हैं। तो आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस सेंसिबली लगाइए कहीं पे। मैं जब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, बट वो बाद में होएगा सब कुछ। अभी के लिए क्योंकि शेयर में इतनी रैली आ रही है तो मेरे को लगा ये वीडियो बनानी ज़रूरी है, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि मोनोपोली बिजनेस होने के वजह से, और थोड़ी क्योंकि मार्केट कहीं कहीं यूफोरिक और पोलराइजेशन है, उस चक्कर में थोड़ी रैली इसके अंदर ज़्यादा आ रही है। सरकारी कंपनीज़ में जब भी हमने ऐसी रैली देखी है तो अनफॉर्चुनेटली एंड इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लगा के चलिए। मैं पर्सनली गवर्नमेंट कंपनीज नहीं खरीदता हूँ, तो फिर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस पर। मुझे नहीं पसंद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो कभी भी बिज़नेस की हालत बुरी कर सकती हैं। तो अगर आपको ये कंपनी पसंद है, बिल्कुल बने रहिए। काफ़ी वीडियोस इस कंपनी के ऊपर पहले से बनी हुई हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। बाकी मेरी वीडियो भी जल्द ही आएगी इस शेयर पर। फंडामेंटली अब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट गवर्नमेंट की प्राइसिंग पॉलिसी की जो डर है वो हमेशा बना रहता है, और मेरे मन में मुझे वही लगता है कि Rule 1 इज़ टू प्रिजर्व योर कैपिटल, उसमें हम रिस्क नहीं लेंगे, तो उस बेसिस पे मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। महंगी वैल्यूएशन इज़ नॉट अ रीज़न फॉर विच आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। महंगी वैल्यूएशन से मुझे इतना डर नहीं लगता जितना सरकार से लगता है। तो बेसिकली जब तक गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो मेरा ये रूल है पर्सनली कि मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। आपका डेफिनेटली हो सकता है कि आप ब्रॉडली हर स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करते हो, तो आप वो कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ही जल्द आएगा विद इन अ मंथ और सो, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, होपफुली उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड आई रियली होप आपको समझ आया होगा कि इसमें रैली इतनी प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यू क्यों हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।